درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بعض اوقات درود پاک کے جب فضائل سنتے ہیں تو ہمارا جی تو بہت چاہتا ہے کہ درود پاک پڑھیں, مگر بعض لوگ یہ ذہن بنا لیتے ہیں, درود پاک کو گرانٹ لے لیتے ہیں کہ جناب پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے. بعض جگہوں پر, بعض موقعوں پر, مواقع پر درود پڑھنا لازم ہو جاتا ہے. میں آپ کو حدیث سنا پڑھا, اس میں تین بڑی اہم باتیں سیکھنے کو ملی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسے ممبر بنا ہوا ہے اس زمانے میں ممبر بنے ہوئے تھے, حدیث کا مجلا سے پیارا آتا کہ ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین. صحابہ کرام علی رضوان بڑی کمال کی ہستیاں تھے. میرے صحابہ کرام جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف میں آپ کی سیرت میں انیوژول یعنی غیر معمولی کوئی چیز دیکھتے تھے تو وہ سوال کرتے تھے حضور آپ نے کیوں کیا. ان کا سوال کرنا ہمارے لیے بھی فائدہ مند بن گیا. انہوں نے سوال کیا حضور آپ نے تین سٹیپس پر آمین کہا, ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے جب میں نے پہلا قدم رکھا تو دعا کی تھی یا اللہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آمین کہا. دوسرے اسٹیپ پر جب میں نے قدم رکھا اپنا دعا کی یا اللہ عز و جل جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کے سبب تو جنت میں نہ جایا وہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا. آقا فرماتے میں نے آمین کہا. تیسرے اسٹیپ پر جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے. اگر پہلے تو دعا کی امپورٹنس سمجھیے, یہ دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کے سردار, ٹھیک ہے, جبریل امین. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم. اٹ مینس اس ان دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, یہ تینوں قسم کے لوگ برباد ہو جائیں گے رمضان بنا اور مغفرت نہ کروا سکتے. دیکھیے میرے بات سمجھیے, ایکچولی رمضان میں ہماری مغفرت کا پراپر انتظام کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں سارے راستے آسان کر دیے گئے. پہلے تو آپ سمجھیے رمضان ہے کیا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں اگر اللہ کریم کو اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا. اس کا مطلب رمضان دیا ہی اسی لیے گیا ہے کہ عذاب سے بچ جائے, راستہ کلیئر. اچھا گناہوں کی طرف کون لے جاتا ہے؟ شیطان لے جاتا ہے. شیطان کو بند کر دیا گیا, سب سے بڑے دشمن کو تو قید کر دیا گیا. اچھا ایک تو شیطان بند کیا گیا, پھر ثواب بڑھا دیا گیا, نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا, روزہ دار کا سونا بھی عبادت, روزہ دار کے منہ سے افطار سے قبل اسمیل آتی ہے. ابھی ہم سب روزہ دار ہیں, صبح سے منہ صاف نہیں کیا ہوگا صحیح طریقے سے, جب سیکھ اسمیل آ رہی ہوتی ہے. فرمایا جو اس بو ہے نا یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. یعنی آپ اگر غور کرتے جائیں کہ مزے کو بھی مزہ آ گیا. رمضان کی راتوں میں ساری ساری زندگی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری دعا سن لے, مگر حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا تو اس کی مراد پوری کر دی جائے, ہے کوئی سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے. کمال دیکھیں, ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ ایک ایسا کام بنا دیا, ایسا آسان کر دیا گیا کہ میرے بندے بخشے جائیں, ہے میرے بندے جنت میں داخل ہو جائیں. اب سب کچھ آسان کرنے کے بعد بھی کوئی جنتی نہ بنے, پھر بھی اللہ کو راضی نہ کرے, تو اس لیے فرمایا کہ برباد ہو جائے کہ اے بندے تیرے لیے سارے کام آسان کر دیے, اتنا اجر بڑھا دیا, شیطان بند کر دیا, دعائیں قبول ہونے لگ گئیں, اب بھی تو نہ بخشا گیا, अब इसमें कौन कौन लोग होंगे जो अल्लाह ना करे महरूम रहेंगे, जो रोजे नहीं रखते, जो रमजान में भी नमाजें कजा कर रहे हैं, जो रमजान में गुनाह कर रहे हैं। आप समझिए रमजान में गुनाह करना ये बहुत शदीद सजा का बाइस है, इसकी सीवियरिटी समझिए। देखिए पहले आपको मैं समझाता हूँ, आपके इलाके में जो बाहर रोड पर अल्लाह ना करे गाली गलौज कर रहा है या खराब काम कर रहा है, गलत है, मगर कोई मस्जिद के अंदर आके अगर काम करे आप क्या कहेंगे यार अल्लाह का खौफ करो, मस्जिद में बैठ के गालियां दे रहे हो, मस्जिद में देख के हराम काम कर लो, ज्यादा सख्त हो जाएगा ना मामला, समझ आया इस बात में। कोई पाकिस्तान में गुनाह करे गलत है, मगर कोई मक्के शरीफ में जाके गुनाह करे तो हुदूद हरम में एक नेकी एक लाख नेकी के बराबर है, मगर एक गुनाह भी एक लाख गुनाह के बराबर है। रमजान एक्चुअली मेरी आपकी मगफिरत करवाने आया, मेरे आपके सवाब को बढ़ाने आया, मगर ये वो बंदा जो रमजान में भी नेकियां नहीं कर रहा, रमजान में भी अल्लाह को नाराज कर रहा है, वो शदीद अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। इसको समझना होगा, रमजान ने हमें बहुत ज्यादा अपने आप पर तवज्जो रखनी है कि गुनाह नहीं होना चाहिए। नफली इबादत थोड़ी कम भी हो जाए ना चलेगा, लेकिन जो गुनाह है ना कि मोबाइल पर गुनाह हो रहे हैं, तो जबान से गुनाह हो रहे हैं, तो आंखों से गुनाह हो रहे हैं, माँ अल्लाह नमाजें कजा हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जबान से झूठ बोल रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, रमजान में बच जाओ। हदीस पाक का एक जुज है कि जो रमजान में एक गुनाह करे उसके एक साल के आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। रमजान की रातों में दोस्तों के साथ बैठते हैं तो क्या इबादत की बातें हो रही होती है, सारी सारी रात बैठे हैं, कोई गिबत कर रहा है, कोई एक दूसरे का मजाक उड़ा रहा है, कोई दिल आजारी हो रही है, ऐसी सोबतें नहीं चाहिए हमें, जहां बैठे को अल्लाह की नाराजगी हो। ये महीना इसलिए नहीं है, इसमें अल्लाह को राजी करें, इसमें तिलावत करें, इसमें दुआएं करें, इसमें इसमें लूट ले खजाना जितना लूट सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, पिछले रमजान में कई लोग हमारे दरमियान थे जो आज हमारे साथ नहीं है, वी हैव नो गारंटी कि अगले रमजान में हम दुनिया में होंगे कि नहीं। इस रमजान को अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझिए और उसकी कदर कीजिए। कोई मुझे अच्छी तरह अंदाजा है, मस्जिद के इमाम साहब को भी पता होगा कि पहले दूसरे तीसरे रोजे तक तो तरावी में भी रश होता है, फजर में भी रश होता है, पर आहिस्ता 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 सारा जज्बा कम होने लग जाता है, थोड़ा जज्बा आता है तो आखिरी इशरे में वापस आ जाते हैं। ऐसा ना करें, आ गए हो ना जाना नहीं है। हाँ, रमजान में भी नमाजें पढ़नी है, रमजान के बाद भी पढ़नी है। रमजान ने एक और बड़ी प्यारी हमारी प्रैक्टिस करवाई है। कुरान कहता है या अय्युह लदीना आमनू कुतिब अलैकुमुस सियाम कमा कुतिब अलल लदीना मिन कब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसे कि पिछले लोगों पर भी फर्ज किए गए थे, लेकिन रीजन क्या बताया कुरान ने, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अब रोजे किसके रखवाए गए, तकवा इख्तियार करने के लिए। अब रोजा भी रखा है और अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहा है। हदीस पाक में आता है, रिवायत में आता है, जो बंदा रोजा रखकर गुनाहों से बाज ना आए ना, तो अल्लाह करीम को ऐसा भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। खाली खाने पीने से तो रुक रहा है, आंखें गुनाह कर रही हैं, जबान गुनाह कर रही है, आंखों का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, हाथ का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, हमने बचना है इस महीने में। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहा ना कि हमारे लिए इतने अमेजिंग अल्लाह की रहमत से काम कर दिए गए हैं, इतना आसान कर दिया गया हमारी मगफरत के रास्ते, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकिया तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या होता है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की नाफरमानी से बंदा पीछे हट जाए, परहेजगारी इख्तियार करे। आपको पता है प्रैक्टिकली हमें प्रैक्टिस करवाई गई, चंद घंटों की भूख हमें अपना भाव बता देती है, फिर किस बात की अकड़ है, फिर किस बात की तुरंत खानी है, ये तेरी और मेरी औकात है। और एक और चीज सोचना है कि मैं और आप तो चंद घंटे की भूख में निढाल हो गए, कई गरीब ऐसे हैं जो सारा साल ही भूखे रहते हैं, जिनका सारा साल ही गोया रोजा होता है, एक वक्त का खाते हैं। सोचिए, ये हमें एहसास दिलाता है कि गरीब की जिंदगी कैसे गुजरती है, अल्लाह ने मुझे और आपको अच्छा बनाया तो शुक्र अदा करें ना, शिकवे कैसे, शिकायतें कैसे। तो मैं बता रहा था कि तकवे की प्रैक्टिस, वाह करोड़ों लोग रोजा रख रहे हैं, एक बंदा बता दें जो इफ्तार से पहले छुटके पानी पी लेता हो, छोटे बच्चे को रोजा रखा वो भी नहीं पीता। अच्छा चले, पानी पीना खाना खाना तो अलग बात है, असर का वजू किया होगा आपने, हलक भी खुश्क है, हमने कुल्ली की, मुंह में पानी ऑलरेडी है, मुंह और हलक में कितना कितना फासला है, एक इंच का, कोई देख भी नहीं रहा, राइट वाले को पता ना लेफ्ट वाले को पता, उतार दिया घूट पता ही नहीं चलेगा, मगर कोई उतारता है घूट गड़गड़ा भी नहीं करते, एक कतरा ना चला जाता है। जब कोई नहीं देख रहा तो कौन देख रहा है भाई बताइए ना, कौन देख रहा है? वाह 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 सुभान अल्लाह। एक तो तकवा है कि बंदा उस चीज से रुक गया जिससे मना किया गया, कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। अकेले में नहीं खा रहे हो, कौन देख रहा है? अब मेरा सवाल है, मेरा रब तुम्हें खाते पीते देख रहा है, वो तुम्हें हराम देखते भी नहीं देख रहा, उसको ख्याल क्यों नहीं आता अल्लाह देख रहा है? वो तुम्हें हराम कमाते हुए नहीं देख रहा, उसको ख्याल क्यों नहीं आता अल्लाह देख रहा है? जो लोग बेहयाई और बुरी बातें कर रहे हैं, जो बदकारियां कर रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, जो जुए खेलते हैं, अच्छा क्या मेरा रब सिर्फ रमजान में देखता है? रमजान के बाद नहीं देखता, जब नमाज कजा होना शुरू हो जाती है, जब ये मस्जिदें खाली हो जाती है, सिर्फ रोजे के इफ्तार को लोग देख रहे हैं, शहरी का वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ हम इसी को देख रहे हैं। वो रब तुम्हें हर वक्त देख रहा है जब हराम करते, यानी अगर आप समझे ना बात को कि मुझे प्रैक्टिकली 30 दिन ये प्रैक्टिस करवाई गई है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। काश ये दिल पर नक्श हो जाए कि जब गुनाह करने को जी चाहे मेरे दिल से सदा आए कि अल्लाह देख रहा है। ये रमजान का एसेंस है, ये रमजान की रिक्वायरमेंट है, ये रोजे का रीजन है। लअल्लकुम तत्तकून, कुरान कहता है रोजे इसलिए फर्ज किए कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। सिर्फ कहा नहीं, पूरा महीना मैंने आपने प्रैक्टिस की है। हम नहीं खाते खाना सही नमक, एक मिनट ऊपर हो गया हम छोड़ देते हैं, भूख लगी है छोड़ देते हैं, अल्लाह देख रहा है। यार खाना छोड़ दो, हराम भी तो छोड़ो ना, हराम देखना छोड़ो, हराम बोलना छोड़ो, नमाजें कजा करना छोड़ो। यानी एक और खूबसूरत बात, रमजान मुझे और आपको ये भी सिखा गया कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ सकता हूँ, हाँ मैं गुनाह छोड़ सकता हूँ, मैं रोजे रख सकता हूँ, मैं अल्लाह की रिजा के लिए इबादत कर सकता हूँ। तो जब मैं ये सब कुछ रमजान में कर सकता हूँ तो रमजान के बाद क्यों नहीं कर सकता? अब आप कहेंगे जनाब को असल में शैतान छूट जाता है। ये बच्चों की जबान में जरा यंगस्टर की जबान में समझाता हूँ, स्पोर्ट्स में पहले नेट प्रैक्टिस करवाई जाती है, डोमेस्टिक मुकाबले होते हैं, फिर बंदे को इंटरनेशनल बड़े मुकाबले में भेजा जाता है। ऐसा ही ना स्पोर्ट्स में होता है, प्रैक्टिस मैच अलग होते हैं फिर फाइनल होता है। रमजान में 30 दिन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको कि शैतान से लड़ना कैसे है, शैतान के वारों से बचना कैसे है, इबादत करनी कैसे, तगड़े हो जाओ कि जब शैतान आए तो उसे नॉकआउट करना है, उसको बताना है ऐ शैतान हम तेरे नहीं, हम रहमान के बंदे हैं। मगर कमाल ये है कि 30 दिन प्रैक्टिस करते हैं और पहले ही दिन पहली रात को मतलब पहली बॉल में आउट हो जाते हैं, इधर शैतान छूटा नहीं, इधर मस्जिद खाली नहीं, क्यों करते हो ऐसा यार? इस बात का समझ करो। मैं रमजान फिर दोबारा उस दुआ पर ला रहा हूँ, टाइम खत्म होने वाला है, के प्यारे आका ने आमीन कहा है उस दुआ पर, तो जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करे, नियत कर ले इंशाअल्लाह रमजान में एक गुनाह भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं चाहिए वो दोस्त जो गुनाह करवाते हैं, हमें इबादत करनी है, हमें इत्तेहाब में बैठ जाए, हम ऐसे दोस्तों में बैठे जो अगर आप रात गुनाह से नहीं बच सकते सो जाओ, रात को मदनी चैनल देखें मगर गुनाह ना। दूसरी बात, प्यारे आका ने किस दुआ पर आमीन फरमाई? जो बूढ़े माँ बाप को पाए और मगफिरत ना करवा सके, अपने माँ बाप की कदर करो। बल्कि सच्ची बात बताओ, आप लकी हैं, वो इस्लामी भाई बहुत खुश नसीब हैं जिनके पास माँ बाप हैं, रमजान भी है और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे साथ, आओ लकी दुआ है। इफ्तार के वक्त तेरे साथ माँ की दुआएं हैं, माँ की बाप की दुआएं, और क्या चाहिए आपको? पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए, कितना रमजान की याद है, खुदा का कदर कीजिए। फिर फरमाया जिनके लिए बाप का नाम सुने और दुरूद ना पड़े वो भी हालात बर्बाद, तो अपनी जबान को दुरूद से कम रखें। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह रमजान हमें सखावत का भी दर्स देता है, अल्लाह की राह में खूब खर्च करें, खास तौर पर अपने गरीब रिश्तेदारों पर खर्च करें। हक है पहले आपके अपने गरीब रिश्तेदारों में, और उसके बाद अपनी ज़कात में, अपने डोनेशन में, अपने फितरे में अपनी दावत इस्लामी को याद, दिल खोल कर दावत इस्लामी का साथ दें। और एक बात और कि फितरे में हमें गलती करते हैं, फितरा नबी पाक ने 4 किस्म का बयान किया है, गंदम का, जौ का, खजूर का और किशमिश का। ठीक है गरीब आदमी गंदम का फितरा देते ठीक है, मगर वो जिसको अल्लाह ने करोड़ से ज्यादा नवाजा है सारी साल रमजान में अजवा गोश्त से इफ्तार करता रहा, चार किस्म की फ्राइयां खाता रहा, शरबत पीता रहा, और ईद वाले दिन फितरा गंदम का दे रहा, वो खुद सोचे सही कर रहा है। अल्लाह की बारगाह में जब अच्छा दोगे ना तो वहां से मिलेगा भी अच्छा। ये शुक्राने का एक अंदाज है, अल्लाह तूने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया तो मैं तेरी राह में भी बेहतरीन खर्च करूं, जिससे बन सके वो अजवा खजूर का फितरा दे, 14,400 रुपए का फितरा दे, आपको अल्लाह ने दरवाजे दे, वरना आंवला खजूर का फितरा दे, किशमिश कर ले, जौ का दे, सबसे लोएस्ट कैटेगरी गंदम की है। क्या ईद की तैयारी ऐसी करते हैं कि दुकान पर गए कह यार तो सबसे सस्ते वाला कपड़ा निकाल लो, सबसे सस्ते वाले जूते दे दो, सबसे सस्ते वाली टोपी दे दो, ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हो, ना कहता नहीं ब्रांडेड निकाल लो, अच्छे निकाल लो, ईद की शॉपिंग टॉप लेवल की, गंदम फितरा सबसे लो लेवल पर, अपने दिल से पूछ लो ये क्या करते हैं। तो इस बार फितरा भी अच्छी क्वालिटी का तो दे सकते हैं, तो दे और दावत इस्लामी को दे, अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।